भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में ठान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, सबका जीवन सुखदायी किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
ओम शांति। Respected seniors, colleagues and dear friends, good evening. It's a great pleasure and honor to introduce today's personality, an outstanding, devoted one-man army personality. He is a secretary of medical wing of Raj Yoga Education and Research Foundation of Pandobhavan since 1985. He did his graduation in homeopathy in 1973 as a DHMS. And after that, he dedicated his services to Prajapita Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya at Mount Abu, Rajasthan, India. He is a director of Health Care Center and Ever Healthy Hospital at Shantivan, Mount Abu. He is a trustee and treasurer of JW Global Hospital and Research Center at Mount Abu. He conducted health awareness campaign throughout India. He is a project director of My India, Healthy India. He arranged more than 70 holistic health conferences in Mount Abu. He is one of the pioneers behind organizing or conferences on Ayurveda and Naturopathy at Mount Abu. He developed and executed a large number of seminars, exhibitions and camps to combat drug abuse in major cities and villages throughout India. He participated in Indo-Nepal health awareness campaign. He created concept of holistic fare, yani swasth duniya banane ka uddeshya. Iske liye swasth mele ayojit kiye gaye. Unhone pichhade adivasi samudaya ki seva mein ग्लोबल हॉस्पिटल के सहयोग से बड़े दाता में सेवा दी। उनको 2001 में राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से होम्योपैथी के नए आयामों की खोज पर सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता को उद्देश्य को बढ़ावा देने के में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अद्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। as a extraordinary, dedicated, a good orator, Sahyogi, I will say a Vedak Diamond Farishte ka naam hai, Dr. Banarsi Lal Shah. Now I represent Dr. Banarsi Lal Shah. अभी दीदी शाहजी सर का फ्लोरल बुके से स्वागत करेंगे.
थैंक यू.
ओम शांति.
तीन दिन से आप सब बहुत कुछ बातें सुन ली है, सुन रहे हैं. आज हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे और आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी. इतनी बड़ी संस्था 140 देशों में जिसकी शाखा है और आप सब लक्की हैं कि हेडक्वार्टर में बैठे हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अनुभूति हो रही है. कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अनुभव हो रहा है. तो उस महान हस्ती कहेंगे, परमात्मा की दिव्य कर्तव्य कहेंगे, उसके बारे में हम यज्ञ की इतिहास, यज्ञ कैसे रचा गया, किसने रचा, किसके द्वारा रचा, उसी व्यक्ति के द्वारा क्यों रचा गया, जबकि भारत में ऐसे हजारों व्यक्ति हैं, उनमें नहीं, उनके द्वारा नहीं रचा गया, इनके ही द्वारा क्यों रचा गया. इन सारी बातों को हम कोशिश करेंगे समय के अंतर्गत क्लियर करने का. तो हम चलते हैं पिताश्री जी की जीवन कहानी, यज्ञ की हिस्ट्री. पिताश्री जी का लौकिक नाम था लेखराज. कृपलानी परिवार में सिंध हैदराबाद के गांव में जन्म हुआ. साधारण परिवार था. बाबा के फादर स्कूल के टीचर थे, मास्टर थे. बाबा के उन्होंने परवरिश की, लेकिन बाबा शुरू से, दादा बाबा मीन्स दादा लेखराज समझिए, दादा लेखराज जी शुरू से चमत्कारी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे, पढ़ाई पूरी किया, बिजनेस में भी बहुत अच्छे. गांव में तो आप समझते हैं हीरे जवाहरात का बिजनेस नहीं होता है, गांव में छोटे छोटे बिजनेस होता है. पढ़ाई पूरा करके किराने का बिजनेस किया, उसमें भी बाबा बहुत आगे गए. फिर वो बॉम्बे आए, बॉम्बे में उनके रिश्तेदार थे, वो जौहरी थे, उनके साथ काम करना शुरू किया. उसमें बहुत निपुण हुए, बहुत आगे चले गए. तो बाबा ने कलकत्ता में हीरे जवाहरात का बिजनेस एक पार्टनर के साथ खोल दिया. देखिए कितना चमत्कारी, ऑनेस्ट, चरित्रवान, गुणवान, एक धार्मिक, क्योंकि कृपलानी माने सिंधी में ब्राह्मण को कृपलानी बोलते हैं, तो कृपलानी फैमिली में उनका जन्म हुआ था, मतलब ब्राह्मण. तो बहुत तेजस्वी, जहां हाथ डालते थे धूल को धन बना देते थे. चीटिंग से नहीं, लोग, कई लोग धूल के धन बना देते हैं चीटिंग से, बाबा अपने मेहनत से, ईमानदारी से, जहां जिस क्षेत्र में हाथ डाला आगे बढ़े ईमानदारी से. तो कलकत्ता में बिजनेस पार्टनर के साथ शुरू किया. बाबा अपने ईमानदारी और त्याग से, परमात्म प्यार से, उन दिनों में इतना परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन लालसा थी, एक भगत थे, गीता पढ़ते थे, गीता पढ़े बिना जल ग्रहण नहीं करते थे। ट्रेन में कहीं जाते थे, सिंध हैदराबाद से कलकत्ता जाना है, ट्रेन ही पहले थी, इतना फ्लाइट का कोई रिवाज नहीं था, ट्रेन में बाबा जाते थे और जब तक फ्रेश होकर के तैयार होकर के गीता नहीं पढ़ते थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। बाबा श्री नारायण के भगत थे, 24 घंटा नारायण का फोटो जेब में होता था, गद्दी पर होता था, दुकान में होता था, घर में होता था, ऑफिस में होता था, शुरू से नारायण को बहुत मानते थे। एक जगह लक्ष्मी जी पांव दबा रही है नारायण जी का, तो बाबा को अच्छा नहीं लगा, जो पेंटर है उसको बुला करके कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, लक्ष्मी जी और नारायण जी का पांव दबाए ऐसा अच्छा नहीं है, अलग कर दो, दोनों का अलग अलग करो, अलग कराया। इतनी भावना, बाबा इतनी कर्मठ व्यक्ति थे, अपने बिजनेस में बहुत आगे चले गए, नई नई डिजाइन, नई नई चीजें बनाना और बना करके वो राजाओं के घरों में भेजते थे। राजाओं के घर में बाबा का परिवार भी बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत सुंदर, तो अपने बच्चों को वो जेवर पहना करके, उनकी डॉटर थी, बहू थी ब्रजेंद्रा दादी पुत्र वधू, इन लोगों को जेवर पहना करके अपने साथ राजाओं के घरों में जाते थे। अब ये तो नहीं है कि एक एक चीज दिखाएंगे, तो ये बच्चे पहन कर जाते थे तो उन राजाओं के जो फैमिली होती थी उन लोगों को अच्छा लगता था, तो कहते थे नहीं ये चीज हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, ऐसा ही हमको बना करके दीजिए। बाबा फिर बना करके भेज देते थे। इतना राजाओं के साथ बाबा का ये हो गया कि राजाएं कहां भी अगर कलकत्ता में जाना हो तो वो लोग बाबा से मिले बिना रहते नहीं थे, बाबा के पास जाते थे। उनके घर में कोई प्रोग्राम होता था तो बाबा को भी बुलाते थे, जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, राजाओं को और राजाओं को निमंत्रण देते थे, वैसे बाबा को भी बुलाते थे। बाबा के यहाँ आते थे तो बाबा भोजन बहुत प्यार से कराते थे, तो भोजन करके खुश हो जाते थे, कहते थे लक्खी बाबू भोजन बहुत अच्छा था लेकिन मजा नहीं आया। राजाओं के भोजन में तो नॉनवेज चाहिए, शराब चाहिए। बाबा ने कहा कि आप कागज देते हो, मतलब बिजनेस में तो रुपया पैसा कागज का ही होता है ना, आप कागज देते हो, उस कागज के ऊपर मैं अपने धर्म को, अपने नियम को चेंज नहीं कर सकता हूं, हम अपने यहां ये चीज नहीं कर सकते हैं। और इतना फराक दिल थे, बाबा को शुरू से धर्म में, परमात्मा में बहुत आस्था थी, भगत थे, तो बिजनेस टाइम में ही वो मंदिरों में या तीर्थों पर जाते थे, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, चाहे बद्रीनाथ गए, वहां जाकर के दान पुण्य करते थे, जबकि शिव बाबा की अभी कोई उनमें प्रवेशता नहीं थी, कुछ नहीं, वो जानते भी नहीं थे, तो भी उनका ऐसा संस्कार था जो दान पुण्य करते थे तो विश्व के लिए करते थे, और कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, पूरा परिवार को लेके जाते थे। जब दान पुण्य करते थे, पूजा करते थे, तो बच्चे भी आजू बाजू खड़े रहते थे, वहां उपस्थित रहते थे। जब वो दान करते थे सारे विश्व के प्रति, तो बच्चे बोलते थे पापा मैं सामने खड़ा हूं, आप अपने नाम से नहीं करते तो मेरे नाम से ही करो, विश्व के नाम से किया क्यों, हम तो सामने हैं ना, पहले मेरे नाम से करो। तो बाबा बच्चों को देख करके मुस्कुराते थे और कहते थे, बेटा विश्व को किया है तो आप कहां खड़े हो, विश्व में खड़े हो ना, तो आपका भी उसमें शेयर हो गया। आपके नाम से करे तो विश्व को शेयर नहीं मिलेगा, विश्व को किया तो आपको भी मिला। मैंने इतने ब्रॉड दिमाग से, उदार चित्त थे, इतना चरित्रवान थे। उन्होंने एक गुरु किया, दो गुरु किया, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसे करते करते उन्होंने 12 गुरु किया था। किसी ने परमात्मा का प्राप्ति नहीं कराया, लेकिन बाबा को खोज थी। तो एक दिन की बात है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वो अपने दोस्त के घर बॉम्बे आए और बाबलीनाथ का मंदिर आपने सुना होगा नाम, कोई कोई देखे भी होंगे, गए भी होंगे मंदिर के अंदर। बॉम्बे में बाबलीनाथ का मंदिर है, शिव का मंदिर है। तो वो फ्रेंड के घर में थे तो नजदीक में ही बाबलीनाथ का मंदिर था। तो बाबा वहां मंदिर में सत्संग हो रहा था, गीता पंडित जी महात्मा जी पढ़ रहे थे। तो बाबा भी चले गए, परिवार के साथ बैठ के सुन रहे थे। उनको कुछ होने लगा, थोड़ी देर गीता सुने और उनके मन में कुछ होने लगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, जिंदगी में नहीं होता है, नहीं हुआ। बाबा एक बार सत्संग में बैठ गए, जब तक सत्संग पूरा नहीं होगा तब तक उठते नहीं थे। गुरुओं में इतनी भावना थी कि बाबा गुरु का बुलाहट हो जाए तो सब काम छोड़ करके चले जाते थे। एक बार की बात है कि उनके बच्चे का जनेऊ था, घर में फंक्शन हो रहा था, मेहमान आए हुए थे, गुरु का टेलीग्राम आया, लक्की बाबू आप आ जाओ, इतना ही टेलीग्राम में लिखा था। वाइफ को कहा कि मेहमानों को आप देखो, प्रोग्राम को आप पूरा कर देना बहुत प्यार से, सबको विदाई देना, मैं जाता हूं। वाइफ ने कहा, बाबा थोड़े देर की और बात है, आप थोड़े देर रुक जाइए, प्रोग्राम आप पूरा कर दीजिए, मेहमानों को विदाई देकर के गुरु जी के पास चले जाइए। तो बाबा ने वाइफ को कहा कि काल का बुलाहट हो तो आप कहेगी कि हे काल मेरे पति को नहीं ले जाओ, ये प्रोग्राम पूरा करने के बाद ले जाओ, ये तो नहीं कह सकती है ना। तो चुप। तो गुरु का बुलाहट काल का बुलाहट है। बाबा ने कहा कि आप देखो, जो कुछ करना है करो, प्यार से इनको विदाई दो, खातरी करो। और बाबा चल दिया, जरा भी नहीं सोचा कि इन मेहमानों का क्या होगा, नहीं गुरु का बुलाहट है। बाबा गए गुरु जी के पास, उन्होंने कहा कि लक्की बाबू मुझे इतना कुछ पैसा चाहिए, बाबा दे करके आ गए, जरा भी कुछ बात नहीं किया, कुछ ये नहीं किया। उन्हें इतना गुरुओं में भावना थी, कोई गुरु उनके घर में आता था तो इतना श्रद्धा, इतना भावना, इतना रेस्पेक्ट कि गुरु जी का बाथरूम, जिस रूम में बाबा गुरु जी के रखते थे, उस बाथरूम को खुद सफाई करते थे, जे गुरु जी को कोई कष्ट ना हो, इतना गुरु में भावना थी। जब बाबलीनाथ के मंदिर में शाम को सत्संग में बाबा बैठे थे, कुछ उनको हुआ तो बाबा धीरे से उठ करके अपने रूम में, बाजू में ही फ्रेंड का कोठी था, अपने रूम में जहां रुके हुए थे वहां चले गए। ऐसा देख करके परिवार वालों को लगा कि ऐसा क्या है कि बाबा उठ करके चले गए, जरूर कुछ बीमारी हुआ है, कोई तकलीफ हुई है जो नहीं सहन कर पाते हैं तो रूम में चले गए। उनकी पुत्र वधू ब्रजेंद्रा दादी पीछे पीछे उठ के गई कि बाबा को क्या हुआ है, देखे तो सही। बाबा रूम में बैठे हैं और पूरा रूम रेड लाइट, रेड लाइट उन दिनों में होता नहीं था और रूम में रेड लाइट नहीं था, परमात्मा की अवतार रेड लाइट और आवाज हो रही है निजानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। आवाज कोई दिखाई नहीं देता है और बाबा बैठा हुआ है, आंखें खुली है, बाबा के मुंह बंद है, नहीं तो मैं व्यक्ति भी कुछ बोल सकता है। दादी देखकर के हैरान, क्या हो रहा है बाबा? जैसे ये सब पूरा हुआ, बाबा की चेहरा बदल गया, कुछ हुआ है। बाबा किसी को दृष्टि देते थे वो ट्रांस में चला जाता था, बाबा को कोई देखता था तो श्री कृष्ण दिखाई देता था। इस तरह से बाबा के जीवन में परिवर्तन, उन्होंने इस चीज को और गहराई से समझने के लिए बिजनेस तो कर ही रहे थे, घर में गए, बाबा एकांत में रहना पसंद करना, साइलेंस में रहना पसंद करना, लेकिन चेहरे पर इतनी रूहानियत थी कि परिवार वाले ये नहीं कहते थे बाबा को कुछ दिमाग का बात है, ऐसा कुछ उनको वासना नहीं आती थी, क्योंकि बाबा को देखते थे तो बाबा फरिश्ता दिखाई देता था। तो बाबा को साइलेंस चाहिए, तो उनका फ्रेंड बनारस में भी रहता था, तो बनारस में चले गए कि साइलेंस में जाकर वहां रहेंगे। कहां भी जाते थे परिवार को लेकर के जाते थे, अकेले बाबा कहां भी नहीं जाते थे, परिवार के साथ बनारस चले गए। बनारस में उनका फ्रेंड का कोठी था, कोठी में रुके, रात का समय था, बाबा अपने रूम में सोए हैं, आवाज आ रही है उठो जागो, विश्व का नव निर्माण करना है। रूम में लाइट, बाबा उठ करके देख रहे हैं कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, आवाज कहां से आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। तब तक उनको क्लियर नहीं है कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता हुई है। जब वहां से उठ करके रात को 1:30-2 बजा है, फ्रेंड के कोठी के बाजू में कंपाउंड में बहुत बड़ा बाग था, बगीचा था, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जानवर भी थे, बड़ा बगीचा होता है तो जानवर तो होते हैं। तो ये भी बाबा को डर नहीं कि 2 बजा है, अंधेरी रात है, बाहर जा रहे हैं, कुछ हो नहीं। बाबा जाते थे आगे आगे, लाइट जैसे सर्च लाइट जल रही है, जाकर के बगीचे में एक थल्ला था, पेड़ के चारों तरफ थल्ला होता है गांव में, थल्ला पर बैठ गए तो वहां साक्षात्कार हो रही है, ये सृष्टि का महाविनाश हो रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई पानी में डूब रहा है, किसी के घर जल रहे हैं। बाबा के आंसू आने लाला आ गया, बाबा घबरा गया, ये क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, इस तरह से सृष्टि का विनाश क्यों हो रहा है। बाबा सोच रहा है, उतने देर में फिर दोबारा बाबा को साक्षात्कार हुआ, कुछ फरिश्ते ऊपर से तारे आ रहे हैं और सृष्टि पर देवता बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। आवाज आई कि आपको ऐसी दुनिया की स्थापना करनी है, ऐसा विश्व को बदलना है। अरे भाई, ऐसा विश्व बदलने के लिए कहां विश्व, कहां मैं ऐसा कैसे काम कर सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, ये कैसे हो सकता है। बातें कर रहे हैं, बाबा घबरा गया विनाश देख करके, जोर से आवाज करने लगा बाबा, दुख कष्ट लोगों को नहीं देखा तो आदमी कराता है ना, तो परिवार के लोग थे, आवाज गई, वो लोग उठ के आ गए, बाबा क्या हो रहा है, बच्ची ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुआ, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो सोया था। तो वहां से शुरू हुआ, वहां से बनारस से सीधी कोलकाता गए और पार्टनर को कहा कि मुझे ये जो भी बिजनेस है, जो मेरा हिस्सा होता है आप दे दो, मुझे अब बिजनेस नहीं करना है, ये कौड़ियों का बिजनेस है, ये पत्थरों का बिजनेस है, मुझे तो हीरे जवाहरात के बिजनेस करना है, वो जो भारत को स्वर्ग बनाना है। पार्टनर समझा कि बाबा को बड़ी उम्र है, शायद दिमाग पर कुछ असर हुआ है, जो हीरे के परखी हैं, कोई भी हीरा मोती में रख करके परख देंगे कि कितना परसेंट इसमें सच्चाई है, कितना परसेंट नहीं है, तो वो देख करके बाबा पार्टनर समझाने की कोशिश किया, बाबा ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो हिस्सा बनता आप दे दो, बाबा कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, देखेगा नहीं कि क्या दिया क्या नहीं, आप दे दो। बिजनेस को वाइंड अप करके सिंध हैदराबाद घर आया, घर में परिवार है, रिश्तेदार है, वाइफ है, बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, किसी ने चूं तक नहीं बोला कि बाबा आप क्या करके आए, वाइफ बोल सकती है, भाई बोल सकता है कि बाबा आप क्या करके आए, चार बच्चे हैं, इनको शादी करना है, पढ़ाना है, धन चाहे होगा तो ही करेंगे ना, परिवार चलाएंगे, नहीं, बाबा में वो दिव्यता आ गई थी, बाबा किसी को भी दृष्टि देते थे, मुस्कुराते थे और कहते थे, उनकी वाइफ सामने आती थी, आई तो कहा, जसोदा, उनका नाम जसोदा था, जसोदा तुम आत्मा हो, तुम जसोदा नहीं हो, वो हैरान हो जाती थी, मैं आत्मा कैसे हूं, सोचने लगती थी, देखती थी बाबा फरिश्ता है, बाबा वो नहीं है जो पति था, ये तो दिव्यता से भरा हुआ फरिश्ता, थोड़ी देर में देखती है कृष्ण नारायण पति हैं, तो वो नाश्ता बना के लाती थी, भोजन बना के लाती थी खिलाने के लिए, तो बाबा बैठा रहता था, तो आती थी तो ये तो फरिश्ता बैठा है, भोजन मैं किसको खिलाऊं, कृष्ण बैठा है, कैसे मैं नाश्ता कराऊं, तो जैसे ये सोफा है वैसे घर में सोफा होता है, बड़ों का घर में सोफे पर उनकी डॉटर निम शांता दादी, पुत्र बधु ब्रजेंद्रा दादी, वो दोनों कन्याएं बैठी है, जसोदा मैया कहती है कि बेटी ये नाश्ता में बना करके लाई हुआ बाबा को खिला करके आओ, वो दोनों बच्चियां कहती है मम्मी आप इतना प्यार से नाश्ता बनाई हो, अब बाबा को स्वयं स्वीकार कराओ, तो कहती है कि मैं बाबा के पास जाती हूं तो बाबा नहीं दिखाई देता है, बाबा तो एंजिल दिखाई देता है, बाबा तो फरिश्ता दिखाई देता है, बाबा तो कृष्ण दिखाई देता है, मैं नाश्ता किसको कराऊं, तो दोनों बच्चियां भी बोलती है कि मम्मी हम भी बाबा के पास जाते तो बाबा नहीं दिखाई देता है पहले जैसा, कभी नारायण दिखाई देता है, कभी कृष्ण दिखाई देता है, तो हम लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से बाबा को शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, बाबा को धूम सवार हो गई, आपको भी यहां बताया गया कि आप आत्मा हैं, आपका पिता परमात्मा निराकार शिव ही हैं, कोई और नहीं है, क्लियर हुआ है, अच्छी तरह से मैं समझ सकता हूं। तो बाबा को जब कोई भी आता था तो आत्मा हो, बच्चा आता था नारायण तुम आत्मा हो, देखिए बाबा में इतनी दिव्यता थी कि बाबा की वो आवाज सुनकर के, वो भाषा सुनकर के, वो स्पिरिचुअलिटी सुनकर के, लोग ओपोजिशन नहीं करते थे। बाबा पहले खुद गीता पढ़ते थे, अभी गीता छोड़ दिया, ओम की ध्वनि लगाने लगा। बाबा तैयार होकर के बैठ जाते थे, परिवार वाले ओम की ध्वनि सुनने के लिए बैठ जाते थे, बाबा खुद बैठ करके ओम करता था तो परिवार वाले भी आकर के बैठ जाते थे, सब ट्रांस में चले जाते थे। कोई कृष्ण को देखता था तो कोई नारायण को देखता था, कोई स्वर्ग को देखता था। अब ये आवाज पड़ोस में भी चला गया, पड़ोस के भी लोग, बच्चे, माताएं, कन्याएं, बड़े आने लगे। बाबा वही सत्संग कराते थे, ओम की ध्वनि लगाते थे, सब ट्रांस में चले जाते थे। ऐसा सिंध में आवाज हो गया कि बाबा के सत्संग में लोग जाते हैं, उनको साक्षात्कार हो जाता है। तो जो गुरु गोसाई जो लोग थे, अपना मठ बना करके सिंध में बैठे थे, जिनके यहां माताएं बहने कथा सुनने के लिए जाती थी, मंदिरों में पूजा करने के लिए जाती थी, वो सब बाबा के पास आ गए और उनको साक्षात्कार होने लगा। तो दुनिया में क्या चाहिए? साक्षात्कार हो जाए, श्री कृष्ण का, श्री नारायण का स्वर्ग दिखाई दे, तो किसी के पास जाएंगे? नहीं, सबके धंधा बंद हो गए, बाबा का सत्संग बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब सत्संग बढ़ता गया तो इसको चलाने के लिए कुछ आदमी चाहिए, कुछ ये चाहिए। अब आदमी कहां से बाबा ढूंढ कर ले आएगा? तो उसी में से कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल 8 साल 10 साल, कुछ माताएं घरों से आ गई। अब वो बच्चे, वो ओम की ध्वनि लगे, वो ट्रांस में चले जाएं, ओम की ध्वनि पूरा हो, थोड़े देर में नीचे आए, सत्संग पूरा हुआ, घर जाते थे, घर में भी वही नशा। उनका जब उन दिनों में जापान और इंग्लैंड और अमेरिका में बिजनेस था, 1936 की बात कर रहा हूं। अब आप सोच लीजिए, जिसका जापान और इंग्लैंड अमेरिका में बिजनेस होगा, उसका घर कैसा होगा, उसका फर्नीचर कैसा होगा, उसका खान पान कैसा होगा, आप सोचिए। तो वो बच्चे अब उसी घर में लौट के सत्संग से जाते हैं, नहीं मम्मी मैं ये प्याज का भोजन नहीं करूंगा, मैं आज तो फ्रूटी लूंगा, मैं दूध ही पीऊंगा, नहीं लेकिन प्याज नहीं खाऊंगा, ये नॉन वेज तो टच भी नहीं करेगा, इस बर्तन में बना है तो इस किचन का भोजन मैं नहीं करूंगा। धीरे धीरे धारणा हो गई, क्योंकि वो प्रैक्टिकल उन्होंने देखा। अब कृष्ण के साथ जो 5 मिनट 10 मिनट वतन में परम धाम में जाकर के सूक्ष्म वतन में जाकर के डांस करके आया है, वो नॉनवेज खाएगा? नहीं खाएगा, भूखे रहेगा लेकिन खाएगा नहीं। कोई कहा होता तो हो सकता है कि चलो भूख लगी है, वो तो कहे, वो तो चले गए, बात खत्म। ये तो खुद ही ट्रांस में जाकर के कृष्ण के साथ झूले में झूल कर आया है, कृष्ण के साथ बगीचे में घूम करके आया है, वो व्यक्ति आकर के आधा घंटा के बाद घर में जाकर के ऐसा करेगा? जब ये बच्चों का सबका परहेज शुरू हुआ तो घर में ऑपोजिशन हो गया, ये क्या बाबा आकर के जादू कर दिया, मेरे बच्चे नॉनवेज नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। ऑपोजिशन, सारे लोग खिलाफ और संत लोग भी खिलाफ, कि हम इतने वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मुझे साक्षात्कार नहीं हो रहा और बाबा के पास जाते साक्षात्कार हो रहा है, जरूर ये जादू टोना है, लोग ये समझने लगे। बहुत ये हुआ, फिर लोगों ने अपने घरों से माताओं बहनों को आना बंद कर दिया, नहीं नहीं जाना है। लेकिन जिनको टेस्ट लग गई है कृष्ण के साथ झूले में झूलने का, जिनको स्वर्ग में घूमने का टेस्ट लग गया, वो तो कहेंगे भाई तुम मार दो, मर जाएंगे, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, हमारे में कोई खामी हो, कोई कमी हो, कोई गलत हमारा व्यवहार हो, तो मुझे जरूर डांटो, जरूर मना करो, लेकिन मेरे में कोई खामी नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई हम ऐसा वैसा कर्म नहीं करते हैं, तो आप मुझे क्यों मना करते हो? हम तो यही कहते हैं ना कि आपके घर में हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम तामसी चीज लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, यही कह रहा हूँ ना। और तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप खाते हो आप खाइए, हम नहीं खाएंगे, बात खत्म हो गई। हम तो ये भी नहीं कहते हैं कि इस घर में नहीं बनना चाहिए, आप मालिक को हम कैसे कहेंगे, हम तो बच्चे हैं, लेकिन हम नहीं खाएंगे, हम इस किचन का कुछ बना हुआ चीज नहीं खाएंगे, हम फल और दूध ले सकते हैं। जब इस तरह की बातें हुई तो उन्होंने दबाव डाला, तो बच्चे वो माताएं बहनें बाबा के पास चली गई, वहां सत्संग शुरू हो गया। लोग आए, भाई हमारे परिवार के आए, हाँ आपके आए हैं, ले जाइए, बाबा ने बुलाया नहीं है, वो आए हैं तो बैठ गए हैं तो बैठे हैं, आप ले जाइए। वो कितना कहते हैं, कितना डांटते हैं, ये करते हैं, नहीं बच्चे नहीं जा रहे हैं। पिकेटिंग हुई और फिर लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने कोर्ट में केस कर दिया कि हमारे नाबालिग बच्चे हैं, इन्होंने फुसला करके ये करके जादू लगा करके अपने पास रख लिया। समन आई, बाबा ने कहा कि ले जाइए, हमने किसी को रोका नहीं है। वो बच्चे रोते धोते उनके रिश्तेदार समन के साथ पुलिस के साथ चले गए। लेकिन एक दिन रहे, दो दिन रहे, तीन दिन रहे, पांच दिन रहे, वहां से कुछ पानी तक नहीं पी रहे हैं। जिस घर में बच्चा बच्ची पानी तक नहीं पिए, उस घर में माँ बाप खाना खाएंगे नहीं खाएंगे। फिर माँ बाप ने हाथ जोड़ दिया कि तुम वहां वहीं रहो, तुम जाओ, कम से कम वहां जिंदा रहोगे तो हम तो तुम्हारे को देख करके खुश तो रहेंगे। यहाँ मेरे सामने तुम भूखे हो और मैं खाऊं, मेरे अंदर जा नहीं रहा है। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, तो वो छोड़ दिए। फिर लोगों को कहने से फिर से वो गए कलेक्टर के पास, नहीं इनको आप ये करिए। कलेक्टर ने डांट लगाई कि एक बार हम सबको आपके पास हवाले कर दिया, आप अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते हो तो फिर बाबा को हम ये करेंगे क्या? आप में इतनी ताकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी एक्ट ये नहीं है कि अपने बच्चों को प्यार दो, संभालो। वो घर में आते हैं और वो आपके घर में वो रहते नहीं है, फिर आप छोड़ते हो, फिर हम बाबा को ये करें? नहीं, हम बाबा को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहां से वो मंडली शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चे, जो दादी प्रकाश मनी जिनको हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहते हैं, वो 10-12 साल के थे, मैट्रिक पास थे, कोई पढ़ना नहीं जानता था। दादी जानकी 104 साल तक शरीर में रही, लेकिन वो 3 क्लास तक पढ़ी थी। अपने बाप को कह दिया कि मैं पढ़ाई अब नहीं पढ़ूंगी, मैं शास्त्र पढ़ूंगी, मैं वेद पढ़ूंगी, मैं रामायण पढ़ूंगी। बाप ने कहा कि तुमको जो करना है जो वो करो, तुम्हारे को वेद शास्त्र खरीद के रख देते हैं। वो पढ़ती रही, बाबा के पास आई, सब छोड़ दिया, उसका जीवन बन गया। तो वो जब आई बाबा के पास तो 3 क्लास पढ़ी थी। हमारी दीदी वो तो पढ़ी नहीं थी कि स्कूल में गई नहीं थी, लेकिन उनमें दिव्यता इन बच्चों में इतनी आ गई, इतना बच्चे लोगों को दृष्टि दें, लोगों को ज्ञान समझाए, क्योंकि लोग आते थे ना जानकारी के लिए कि क्या हो रहा है, चलो देख कर आए। तो बाबा हर व्यक्ति से तो नहीं मिलते थे, ये बच्चे ही उनको उनसे मिलते थे। छोटे छोटे बच्चे इतना स्पष्ट ज्ञान दें आत्मा का, परमात्मा का, वो तो हैरान हो जाए कि ऐसा ज्ञान तो कहीं हमने सुना नहीं है, और जो कह रहे हैं इसमें सत्यता दिखाई दे रही है, ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, और इतना हिम्मत से बोल रहे हैं, वो सत्यता दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से संस्था का शुरुआत हुआ। 14 साल तक बाबा कराची पाकिस्तान में रहे। 47 में बंटवारा हुआ, जो ऑपोजिशन करते थे, जो बंटवारे के बाद, क्योंकि सामान तो कोई इंडिया में लाने नहीं, वो मुसलमान लोग देते थे, वो बाबा के पास छोड़ कर आते थे। बाबा कहते थे नहीं हमको नहीं चाहिए, कल तुम गाली देता था तुम्हारा सामान हम लेके क्या करेंगे, तुम ले जा। तो नहीं बाबा हम ले नहीं जा सकते हैं, बहुत प्यारी चीज है, मैं घर में भी नहीं छोड़ सकता हूँ, यहाँ छोड़ के जाता हूँ, आप सब यूज करना। सारा मैदान भर गया सामान से, क्योंकि वो लोग छोड़ के गए, कहे उन्होंने समझा कम से कम मुसलमान लोग यूज करे, इसे तो बाबा के बच्चे यूज करेंगे, हमारे बच्चे यूज करेंगे, सफल तो होगा, छोड़ कर गए। 14 साल तक बाबा तपस्या कराया, अच्छी तरह से खिलाया पिलाया संभाला, उन बच्चों को बच्चों के दृष्टि से नहीं देखा, ये हमारे ठाकुर बच्चे हैं। मार्केट में कोई नया फल आता है तो आप समझते हैं कि नया फल आता है तो बहुत महंगा होता है, जैसे मार्च में फरवरी में मैंगो आता है, हापुस आता है, कितना महंगा होता है, वही जाकर के मई जून में कितना सस्ता हो जाता है। तो मार्च में इतना महंगा चीज मंगा करके नहीं, मैं अपने ठाकुर बच्चों को अपने हाथ से फल काट के खिलाऊंगा, इतना बाबा प्यार करते थे, इतनी पालना देते थे। कोई डॉक्टर, इतने 400 बच्चे थे, कोई बीमार होता था तो कोई डॉक्टर नहीं आता था, बाबा जाकर के दृष्टि देते थे, सिर पर हाथ रखते थे, बुखार गया, सिर दर्द गया, बीमारी गई। 14 साल तक कुछ कैंपस में डॉक्टर नहीं आया था। जब 51 में बंटवारा 47 में बंटवारा हुआ फिफ्थ, तो सब लोग आ गए, उनके रिश्तेदार बाबा को कहे कि बाबा आप भी चलो। बाबा ने सरकार को लिखा पढ़ी किया कि हम भी जाना चाहेंगे। सरकार ने कहा कि बाबा आपको कोई तकलीफ है मुझे बताइए। झगड़ा शुरू होता शहर में, पुलिस आकर के खड़ी हो जाती थी ताकि कोई आश्रम पर आश्रम के ऊपर कुछ करे नहीं, इतना सरकार का ध्यान रहता था। तो सरकार कहती थी कि बाबा आप पाक साफ हो, इसलिए हमारा पाकिस्तान बचा है आपके कारण, इसलिए आपको नहीं जाना है। बाबा चुप हो जाते, भाई सरकारी छुट्टी नहीं दे रहे तो मैं कैसे जाऊंगा। 51 में बाबा ने फिर से लेटर लिखा कि भाई इनके रिश्तेदार सब इंडिया में चले गए, बच्चों के वो बुला रहे हैं तो हम क्या करें। अब वो आना चाहते हैं मिलने के लिए तो रूल नहीं है, नियम नहीं है जो आए, और ये बच्चे जा नहीं सकते हैं। तो फिर सरकार ने कहा कि ठीक है बाबा, फिर ये तो हम अपने नियम को रूल को नहीं चेंज कर सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं। मुसलमानों ने, सरकार ने एक आलपिन तक नहीं रखा, स्टीमर करके हर चीज बाबा का स्टीमर में बांध करके पैक करके दे दिया कि बाबा यहाँ आपका एक आलपिन भी नहीं छोड़िए, हमको ये संस्था का आश्रम का नहीं चाहिए। और माउंट आबू में आए, ओखा बंदरगाह में आए, बंदरगाह पर आए, और वहां से ट्रेन लेकर के माउंट आबू आबू रोड आए, और वहां से माउंट आबू आए। अब जिसका जीवन ही कराची और सिंध हैदराबाद सागर के किनारे रहा है, वो सागर के किनारे 20 25 50 साल पले हैं, वो माउंट आबू में आए, जून में आए, जून एक महीना के बाद बारिश शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हुई, ठंडी शुरू हुई। अब वहां तो कराची में समुद्र के किनारे रहने वाले कुछ लोग होंगे बॉम्बे के, कोई स्वेटर होता है, कुछ नहीं होता, ठंडी नहीं होती, स्वेटर किस लिए रखेंगे। तो ठंडी लगे, बीमार पड़ना शुरू हुए। अब वहां से बेगरी पार्ट शुरू होता है, 3-4 साल तक बेगरी पार्ट रहा। एक दिन ऐसा दिन आया कि 4 आना पैसा नहीं है, 400 लोग खाने वाले हैं, और अब आप सोचिए आपके घर में 10 मेंबर हैं और पैसा न हो सुबह नाश्ते के लिए, तो आपका क्या हल होगा, ख्याल चलेगा ना। बुद्धि चलेगी ना, बच्चों को कैसे नाश्ता कराएं, रिश्तेदारों को कैसे नाश्ता कराएं, कहां से लाएं, किससे कर्ज लें, किससे मांगें। लेकिन बाबा किसी के साथ नहीं, हालांकि बाबा राजाओं के साथ बिजनेस था, दोस्ती था, किसी भी राजा को फोन कर देते कि भाई थोड़ा वक्त मेरा ठीक नहीं है, आप थोड़ी मदद कर दो, वो करने के लिए तैयार थे, उनको पता लगे तब तो। लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बाबा को निश्चय था ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान का यज्ञ है, हमारा यज्ञ नहीं है, भगवान का यज्ञ है। तो ये भगवान संसार में कभी भूखा नहीं रहता है, तो ये बच्चे कभी भूखा नहीं रहते, नहीं रहेंगे। और रियली हमारी दादी गुलजार दादी जो ट्रांस में जाती है, जिनके अंदर में श्री बाबा की प्रवेशता होता था, वो अनुभव सुनाती थी। 4 साल बेगरी पार्ट चला है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं आया है, कोई शाम नहीं आई है कि हमको रात को भोजन नहीं मिला हो और हम सब बिना खाए सोए हैं। पेपर था, कुछ बच्चे चले गए, बाबा हम घर लौकिक में जाएं और घर वालों से मजदूरी लेकर के ले आएं। हाँ बच्ची क्यों नहीं, आपका आप जा सकते। गए घर में फंस गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे मुझे जीना है तो बाबा के साथ जीना है, मरना है तो बाबा के साथ मरना है, निश्चय। अब बाबा ने ऊपर से श्री बाबा का इशारा हुआ, इन बच्चों को सेवा पर भेजो, ये पक्के बच्चे हैं, कभी बदलेंगे नहीं, कभी ये नहीं होंगे। अब वो दादियां कोई को बॉम्बे भेजा, किसी को दिल्ली भेजा, किसी को लखनऊ भेजा, वो भी कहानी है। हमारी दीदी आप समझते हैं मनमोहिनी दीदी, वो किस परिवार के थी, आज भी उनका परिवार है, जसलोक हॉस्पिटल है ना, जसू और लोकुमल, जसू उनके वाइफ का नाम था, लोकुमल वो भाई का नाम था। वो सारा पैसा लेकर के, उनके बच्चे नहीं थे, पैसा लेकर बाबा के पास आ गया, बाबा मुझे साक्षात्कार करा दो और ये धन आश्रम में दे देते हैं, आपको दे देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे पैसे पर साक्षात्कार नहीं होता है, वो तो परमात्मा का काम है, किसको कराता है किसको नहीं कराता है वो जाने, उसका काम जाने। तो बाबा क्या करे धन को, तो आप बच्चे आप ले जाओ हॉस्पिटल बनाओ, कोई अच्छा काम करो। वो जाकर के जसलोक हॉस्पिटल बनाए, आज भी जसलोक हॉस्पिटल एक प्रेस्टीज हॉस्पिटल है बॉम्बे का, जसू और लोकुमल दोनों के नाम से जसलोक हॉस्पिटल है। तो इस फैमिली की हमारी दीदी थी, अब उसको बाबा ने बोला कि आप जाकर के दिल्ली में सेवा करो। दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़े रईस फैमिली की थी, तो अब दीदी और 2-3 बहनें उनके साथ थे, दिल्ली चले गए। दिल्ली स्टेशन पर उतरे, अभी कहां जाएं कुछ पता नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई रिसीव करने वाला नहीं है। बाहर कुली से पूछा, बाहर बाहर किधर से जाते हैं, दीदी इधर से बाहर जाओ। बाहर जाते हैं वो आपको समझ सकते हैं, ऑटो वाले कैसे व्यवहार करते हैं, लोग कैसे वहां स्टेशन पर होते हैं, देख करके हैरान, ऐसे दुनिया होती है क्या, ऐसे लोग होते हैं। फिर भी हिम्मत रख के पूछा, भाई यहाँ नजदीक में कोई धर्मशाला है? हाँ दीदी बाजू में ही है, चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। छोड़ के धर्मशाला वाला बोलता है, 2 दिन से ज्यादा हम किसी को रूम नहीं देते हैं, आप आए हो 2 दिन के लिए, चाबी लो रहो। ठीक है 2 दिन तो रखो, 2 दिन के बाद क्या बाबा को कराना है कराएगा। तैयार हो करके और जमुना के कंठे पर जा करके, जिसके घर में नौकर चाकर गलीचे पर घूमते हैं, वो दीदी फटी हुई बोरी धर्मशाला से लेकर के, क्योंकि बैठने के कोई चीज था नहीं, फटी हुई बोरी धर्मशाला से मालिक से मांग करके ये ले जाए। हाँ दीदी ले जाओ, ये तो फटी हुई है तो फेंक दिया है हमने। वो बोरी ले जा करके यमुना के तट पर बिछा करके, और दादियां 3-4 दादियां तपस्या कर रही है। यमुना में लोग गए हैं स्नान करने पूजा करने, बाहर निकलते हैं देखते हैं कि एकदम ये तीन चार देवियां, इनके चेहरे पर कितनी तेज है, चमक है, प्यूरिटी चमक रही है, ये कौन है? तपस्या कर रही। बड़े हिम्मत रखकर उनके नजदीक गए, गए स्नान करने तो कोई नहीं था, स्नान करके निकले थे, ये कौन है? आज तक यहां कोई बैठा नहीं, ये कौन आए हैं आज? उन्होंने पूछा तो दीदी ने कहा कि हम पहाड़ से आए हैं, माउंट आबू से आए हैं, योग सिखाने के लिए आए हैं। तो माताओं ने कहा कि हमको योग सिखाएंगे? हाँ बैठो। सत्संग शुरू हो गया, सत्संग पूरा हो गया तो माताओं ने बोला कि अपना एड्रेस बताइए, हम शाम को भी आपके पास आएंगे। तो बोला कि हमारा कोई एड्रेस नहीं है, उस सुबह आए हैं ट्रेन से, वो धर्मशाला में रुके हैं, तैयार होके यहाँ आए हैं। बोला कि वो धर्मशाला ठीक नहीं है, मेरा बंगला खाली है, आप चलो सामान उठाओ, बंगला में शिफ्ट कर लो। सेवा शुरू हो गई। और इन दादियों के त्याग तपस्या, दादियों के लिए कोई देखते थे कितना सिंपल लाइफ है, सुखी रोटी और सब्जी खा रही है, मांग भी नहीं रहे कि मेरे लिए थोड़ा घी ले आना, थोड़ा दूध लाना, नहीं तो कोई घी का टीना ला करके रख देता था। दादियां उस टीने से घी नहीं लगाती थी, क्यों भाई? बाबा हमारा सुखी रोटी खाता है, बेगरी पार्ट है, ये यज्ञ में भेजो। वो आकर के देखते थे टीना तो ऐसे ही पड़ा है, दादी आप क्यों नहीं खोलते हो? नहीं भाई, बाबा सुखी रोटी खाता है, ये यज्ञ में। अब तो दादी आप इसको खोलो, हम यज्ञ के लिए दूसरी लाएंगे शाम को। नहीं, इतना यज्ञ से, बाबा से प्यार। एक अमृतसर में एक भाई, इतना बड़ा तरबूज, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, इतना बड़ा तरबूज ला करके सेंटर को दे दिया, दादी गर्मी के दिन है आप लोग खाओ। दादी बोला कि नहीं, बाबा को तरबूज नहीं वहां मिलता है, उस पर बाप दादा लिख दिया, शिव बाबा बाप दादा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी, और ट्रेन में डाल दिया। उड़ो लुढ़कते पड़कते, उन दिन के लोग अच्छे थे, वो ट्रेन आबू रोड आकर के रुकी और उतार करके उन्होंने दे दिया कि भाई ये आपके लिए आया है। इतना खुद के लिए नहीं, बाबा के लिए। इतना बच्चों में जो प्यार था माँ बाप का, तो बेगरी पार्ट से वहां से धीरे धीरे, और वहां से सेवा शुरू हो गई। क्या वो लखनऊ, लखनऊ की बात सुना है, समय बहुत तेजी भाग रहा है, दो तीन मिनट है। तो ऐसे चारों तरफ सेवा हुई, और जब सेवा शुरू हुई धीरे धीरे बाबा के बच्चे आने लगे, यज्ञ में ये शुरू हो गया आना, तो धीरे धीरे बाबा अब बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। पहले वो किराए का वो ये था, भरतपुर कोठी, ब्रिज कोठी जिसको बोलते थे, उसके बाद राजस्थान सर्किट हाउस जो आज है, वो ढोलपुर हाउस था वो लिया, फिर वहां से एक पोकरान हाउस था, राजा का ये था, वो घोड़े का ये था, बांधते थे लोग, राजाएं तो घोड़े रखते थे ना, तो घोड़े बांधने का वो पोकरान हाउस था, उसको ले लिया गया। बहुत कम उन दिनों पैसा के कोई ये नहीं था, बहुत कम पैसे में वो मिला, ले लिया, उसको सफाई करा करके वहां सब शिफ्ट हो गए, वहां रहते थे। इतना बाबा त्यागी था, बारिश होती थी टपकता था पानी, बाबा को होते हिस्ट्री हॉल थोड़े मकान बन गए थे, दादियां रिक्वेस्ट करती थी कि बाबा नए मकान में आप आ जाओ, नहीं नए मकान बच्चों के लिए है। परमात्मा शिव बाबा पुरानी लॉन्ग बूट में आया है, बॉम्बे में लॉन्ग बूट है, तो लॉन्ग बूट में बाबा आया है, पुरानी झोपड़ी में आया है, ये बाबा नए मकान में कैसे रहेगा, यही रहेगा। इतना त्याग तपस्या, इतनी हर चीज बाबा खुद करते थे, मम्मा खुद करती थी, बच्चों को कहा नहीं, और मम्मा बाबा को देख करके बच्चे खुद करते थे। ऐसे यज्ञ की शुरुआत हुई है। जब सेवाएं शुरू हुई, चारों तरफ से लोग भाई बहने आना शुरू हुए, जगदीश भाई जैसे लोग दिल्ली में शुरू हुई सेवा, सत्संग शुरू हुआ, जगदीश भाई को पता लगा, वो आए, उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत क्वेश्चन पूछते थे, इतना क्वेश्चन पूछते थे कि लोग वो सब बहने हैरान हो जाते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन जवाब बहनों को इतना पावरफुल होता था, निश्चय होता था कि उनको वो अच्छा लगता था। तो फिर इस तरह से जब सब आने लगे तो वेविंग्स का काम जगदीश भाई ने 85 के बाद, ऐसे तो विस्तार बहुत है, 85 के बाद विंग का काम शुरू हुआ। 15-20 विंग बनाया गया, उसमें एक मेडिकल विंग है। पहले लोग कौन आते थे, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस होती थी, कौन आते थे, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचर क्योर, ये वो, ऐसे लोग झोला छाप आते थे, डॉक्टर आए हैं। और वहां से सेवा शुरू हुई है। मैं 72 में आया हूँ, इतना छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था, इतना छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था, गरीबी बेगरी पार्ट इतनी थी, ये आज कुर्सी जो बैठे हैं, ऐसा एक भी कुर्सी नहीं था, कुछ नहीं था। एक दादा अपने रूम से स्टूल निकाल करके लाया, बोला कि इधर बैठो बिहारी बाबू, आप खाली सेवा करता है, पढ़ लिख करके आया है, ये काम करो। तो रात को वहां बैठते थे, इस पर पांव पर रख करके, वहां से शुरू हुआ है। आज इतने हॉस्पिटल बना है, सब कुछ बना है, सेवाएं यहां से शुरू हुई है। हमारी दादियों ने इतनी सेवा की है, हमारी जानकी दादी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको बाबा ने लंदन भेजा। बाबा मेरे को लंदन क्यों भेज रहे हो, आ तो हम पढ़ी लिखी नहीं है, आप लंदन में मुझे भेज रहे हो, हम कैसे वहां लोगों को, अंग्रेजों को समझाएंगे, बच्ची तुमको लंदन में मधुबन बनाना है, ऐसा एटमोस्फेयर करना है। दादी की क्या जीवन कहानी, एक एक दादियों को मैं सुनाऊं, समय हो गया। तो इन दादियों की तपस्या त्याग के कारण आज लंदन आप जाएंगे, मधुबन जैसा है, 24 घंटा वहां लंगर चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं, और 500 का क्लास अंग्रेजों का होता है, 500 का क्लास इंडियन का अलग होता है, इतना बड़ा क्लास हर जगह, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, अमेरिका हो। मोहिनी दीदी आई है, 300 एकड़ में इनका आश्रम है, 300 एकड़, अमेरिका, उसको पीस विलेज ही कहते हैं, इतना बड़ा। कौन कराता है? डायरेक्ट बाबा कराता है। बाबा इतने उमंग उत्साह से मुरली चलाते थे, दादियां तो थोड़ी सी थी, लेकिन बाबा को विजन तो था कि बच्चे यहाँ अंग्रेज आएंगे, सभी देशों के अंग्रेज आएंगे, और ये एक दिन आएगा सब लोग आएंगे। दादियां बोलती थी, बाबा हमारे में से तो कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं है, कौन उनको समझाएगा, कौन मिलेगा, कौन रिसीव करेगा, कौन बात करेगा, वो किससे बात करेंगे। बाबा मुस्कुराते थे और कहते थे, बच्ची हो जाएगा, समय आएगा, हो जाएगा। आज हमारे यहाँ हर देश की हर भाषा को जानने वाले बच्चे हैं, और वो हर जगह जाकर के आश्रम, रसिया में जाकर के आश्रम खोले हैं। कितने हजारों रशियन भाई बहने आते हैं, इंडियन जैसा काम करते हैं। ये कौन करा रहा है? इतने देश विदेश में सब जगह सेवा हो रही है, ये परमात्मा का काम है, कोई व्यक्ति का काम नहीं है, कोई मनुष्य का काम नहीं है। ये देखा गया है कि भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक वो चले गए तो संस्था नीचे चली गई, बहुत कुछ योग्य उनके अनुयायी रहे तो वहां टिका करके रखे। और यहाँ बाबा 69 में अव्यक्त हुआ, और 69 से ये संस्था, बाबा के होते 100-125 आश्रम थे, आज कितने आश्रम है, 8,140 देशों में आश्रम है। ये कौन करा रहा है? आज भी बाबा करा रहा है। आज देखिए, हम सामने की बात कर रहा हूँ, पहले बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि को कुछ काम करना होता था, बाबा को बुलाती थी गुलजार दादी के तन में, बाबा के रूम आप लोग देखेंगे, एक गद्दी होता है, वो गद्दी आज भी है, और वहाँ बाबा आते हैं और एक एक चीज डायरेक्शन देते हैं। और आज बाबा नहीं है, गुलजार दादी नहीं है, और दादी नहीं है, दीदी नहीं है, यीशु दादी नहीं है, कोई नहीं है। यज्ञ का काम देखिए, हमारी छोटी छोटी बहनें इतना बड़ा बड़ा काम करके देती है। कहाँ कहाँ रिट्रीट सेंटर बन रहा है, बड़े बड़े महल बन रहे हैं, इतनी सेवा केंद्र खुल रहे हैं, प्रेसिडेंट जाके उद्घाटन कर रही हैं। रायपुर में अभी बना, अभी पिछले महीना प्रेसिडेंट उसको उद्घाटन करने दिल्ली से आई थी। सोचो कौन करा रहा है, भगवान का काम है, मनुष्य का काम नहीं है, परमात्मा स्वयं करा रहे हैं ये काम। आप लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर कैसे आए हैं, मेरे बुलाने से आए हैं? मेरे बुलाने से एक भी व्यक्ति नहीं आ सकता, मैं खुद जानता हूं इतने बड़े डॉक्टर्स, भगवान ने बुलाया है। और सबको अनुभूति, मैं 3 दिन से योग कराता हूं, देखता हूं साइलेंस क्या होती है, मैं हैरान हो जाता हूं। डायरेक्ट बाबा आकर के एक एक बच्चे को साइलेंस की परवाह होता है, एक एक खुश होता है, कितना पावरफुल लोगों को अनुभूति होती है। यहां से बैठ करके मैं रीड करता हूं, ये परमात्मा का काम है। और ये काम अब समाप्त होने जा रहा है, आप लक्की हो ऐसे टाइम पर आए हो। तो इतना पुरुषार्थ करना है, इतना बाबा को याद कर, पुरुषार्थ और क्या करना है, घर बार छोड़ना है, परमात्मा को याद करने के लिए अभी मंदिर जाना है, कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाना है। लोग कहें ये डॉक्टर नहीं है, ये डबल डॉक्टर है, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो भगवान है, समझ रहे ना। जीवन को परिवर्तन करना है। आज हमारी दादियां अपने जीवन को परिवर्तन किया, बाबा ने जीवन को परिवर्तन किया, मातेश्वरी ने जीवन को परिवर्तन किया, और लोगों पर ये हुआ। तो अब एक ही चीज है कि आप अपने जीवन को परिवर्तन करें, सब कुछ आएगा। आप एक सीनियर डॉक्टर्स हुए तो आज समाज आपको क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू गॉड, कितने लोगों को कष्ट से निवारण करते हैं। और जिस दिन आप श्री लक्ष्मी बन जाएंगे, सारा विश्व पूजा करेगा। जिस दिन नारायण बनेंगे, सारा विश्व पूजा करेगा। भगवान आ गया है ये करने के लिए, अब काम पूरा हो रहा है, इसलिए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है। बाबा ने कहा है कि अभी भी सीट अनाउंसमेंट नहीं किया है, अष्टरत्न कौन होंगे, 108 में कौन आएंगे, किसका क्या होगा, वो अंत में अनाउंसमेंट होगा। तो अंत में आप लोग भी अपना फर्स्ट नंबर 1 में आ सकते हैं। इतना तपस्या करना, इतना ही करना है। और तपस्या करने के लिए जंगल नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, अपने ऑफिस में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में इतना बाबा के साथ बातें करनी है। ऐसा नहीं कि लाल लाइट थिएटर में जला दो और ऑपरेशन करो, वो भी नहीं करना है। बाबा को बुलाना है, बाबा आओ ऑपरेशन करो, हाथ मेरा, काम आपका, इतना निश्चय। आज कोई बच्चा है, वो उसका बाप कलेक्टर है, उसका बाप चीफ मिनिस्टर है, उसका बाप प्राइम मिनिस्टर है, वो घर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होगा, उसके लिए वो उसका बाप है। वो कहेगा पापा ये काम करना है, मेरे को पढ़ाओ। प्राइम मिनिस्टर अपने बच्चे को घर में बैठ के पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर। तो परमात्मा दुनिया के लिए परमात्मा है, इसलिए हम परमात्मा कहते नहीं है, हम बाबा कहते हैं, वो मेरा बाबा है। तो ओम शांति, थैंक यू। अब आप लोगों से हम सुनेंगे।